हे सीते, त्रिजटा बोलती है, मैंने भी अनिष्ट की सूचना देने वाले घोर सपने देखे हैं। उससे भी लगता है कि रावण का विनाश काल आ रहा है। मैंने सपने में देखा रावण का सिर मुंड दिया गया, उसके सारे शरीर में तेल लगा दिया, उसको कीचड़ में डुबा दिया, गधों से जूते रथ पर खड़ा होकर बार बार नाच रहा है। उसके साथ ये कुंभकर्ण आदि भी मुंड बुड़ाए, लाल चंदन लगाए, लाल लाल फूलों की माला पहने, नंगे होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे। केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए, सफेद पगड़ी पहने, श्वेत पुष्प और चंदन से चर्चित हो श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े दिखाई पड़े हैं। विभीषण के चार मंत्री भी उनके साथ हैं। अतः ये लोग उस आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ये देखा है कि भगवान राम के बाणों से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः ये निश्चय है कि तुम्हारे पतिदेव का सुयश समस्त भूमंडल में फैल जाएगा। अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवर से मिलकर प्रसन्न हो जाओगी। त्रिजटा की बातें सुनकर सीता के मन में बड़ी आशाएं बंधी, पुनः पतिदेव से भेंट होगी। उसकी बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियां सीता के पास आकर घेर कर बैठ गईं। वह एक शिला पर बैठी हुई पति की याद में रो रही थी। इतने में ही रावण ने आकर देखा और काम बाण से पीड़ित होकर उसके पास आया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गई। रावण कहने लगा, सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर अनुग्रह दिखाया वह बहुत हो गया। अब तुम मुझे पति मानो और मेरे पर कृपा करो। ये प्रेम जो तुम राम को दे रहे हो वो प्रेम मेरी ओर लौटाओ। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियों में ऊंचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूँ। देवता, गंधर्व, दानव, दैत्य, इन सब की कन्याएं मेरी पत्नी के रूप में यहाँ विद्यमान हैं। 14 करोड़ पिशाच, 28 करोड़ राक्षस और इनके तिगुने यक्ष मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे भाई कुबेर की तरह मेरी सेवा में अप्सराएं भी रहती हैं। मेरे यहाँ भी इंद्र के समान दिव्य भोग हैं। यहाँ रहने से तुम्हारा वनवास का दुख दूर हो जाएगा। इसलिए सुंदरी, तुम मंदोदरी के समान मेरी पत्नी हो जाओ। रावण के ऐसा कहने पर सीता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। तिनकी की ओट करके कांपती हुई कहनी, राक्षस राज, तुमने अनेकों बार ऐसी बातें मेरे सामने कही, मुझे बहुत कष्ट पहुंचता है। मुझे अभागिनी को तुम ऐसी बातें आज सुना रही हो, ये मेरी विवशता है। मेरे पति के सामने तुम ऐसी बात कहो तो अंतिम बात होती। तुम मेरी ओर से सब प्रकार से मन हटा लो। मैं पराई स्त्री हूं, पतिव्रता हूं, तो मुझे किसी तरह नहीं पा सकते। यह कहकर सीता अंचल में अपना मुंह ढाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका कोरा उत्तर पाकर रावण वहां से अंतर्धान हो गया और शोक से दुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरी वहां रहने लगी। उस समय त्रिजटा उसकी सेवा करती थी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इधर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ माल्यवान पर्वत पर रहते थे। सुग्रीव ने उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया। एक दिन भगवान राम लक्ष्मण से बोले, सुमित्रानंदन, जरा किष्किंधा में जाकर पता लगाओ सुग्रीव क्या कर रहा है। मैं तो समझता हूं वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना नहीं जानता। अपनी मंद बुद्धि के कारण उपकारी का भी अनादर कर रहा है। यदि वह सीता के लिए कुछ उद्योग न करता हो, विषय भोग में आसक्त होकर पड़ा हो, तो उसे भी तुम बाली के मार्ग पर पहुंचा देना। यदि हमारे कार्य के लिए कुछ चेष्टा करता हो तो शीघ्र यहां लौटा करके लाना, विलंब मत करना। भगवान राम के ऐसा देखो भाई, और जगह रामायण सुनते हो, ये रामायण से थोड़ा थोड़ा फर्क लगता है ना, तो भला ही हो। ये कल्प भेद से अलग अलग कथाएं हैं। भगवान राम के ऐसा कहने पर बड़े भाई की आज्ञा मानने वाले वीरवर लक्ष्मण जी प्रत्यंचा चढ़ाया हुआ धनुष लेकर किष्किंधा की ओर चल पड़े। नगर द्वार पर पहुंचकर बेरोक टोक भीतर घुस गए। वानरराज सुग्रीव लक्ष्मण को कुपित जानकर स्त्री को साथ ले बहुत विनीत भाव से उनकी अगवानी में आए, पूजा की, सत्कार किया। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और निर्भय होकर श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनाने लगे। सब सुन लेने पर सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मण मेरी बुद्धि खोटी नहीं है, मैं कृतघ्न नहीं हूं, निर्दयी नहीं हूं। सीता के खोज के लिए जो यत्न मैंने किया है उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सब दिशाओं में सुरक्षित बानर भेजे गए हैं, उनके लौटने का समय नियत कर दिया है। कोई भी एक महीने से अधिक समय नहीं लगा सकता, उन्हें आज्ञा दी गई है। वे पृथ्वी पर घूम घूम कर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, गांव, नगर, घर घर में सीता की खोज करेंगे। 5 रात में उनके लौटने का समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद श्री रामचंद्र जी के साथ प्रिय समाचार सुनेंगे। सुग्रीव की बात सुनकर लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने क्रोध का त्याग कर दिया। इस प्रबंध के लिए सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की। फिर उन्हें साथ लेकर वे राम जी के पास गए। सुग्रीव ने जो कुछ प्रबंध किया था उसे उनसे निवेदन किया। समय पूरा होते होते 3 दिशाओं में खोज करके हजारों बानर आ गए। केवल दक्षिण दिशा में गए वे बानर अभी तक नहीं लौटे। आए वे बानरों ने बताया कि बहुत ढूंढने पर भी हमें रावण और सीता का पता नहीं लगा। फिर 2 मास व्यतीत होने पर कुछ बानर बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के पास आए और कहने लगे, महाराज बाली तथा आपने जिस महान मधुवन की अब तक रक्षा की है वह आज उजाड़ हो रहा है। आपने जिन जिन को दक्षिण दिशा में भेजा था वे पवन नंदन हनुमान, बाली कुमार अंगद तथा और भी बहुत से बानर मधुवन का स्वेच्छानुसार उपभोग कर रहे हैं और उसका मधु पी रहे हैं। उनकी धृष्टता का समाचार सुनकर सुग्रीव समझ गए उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, नहीं तो वे ऐसी चेष्टा नहीं कर सकते थे। ऐसा सोचकर बुद्धिमान सुग्रीव ने राम जी के पास जाकर एक समाचार सुनाया। राम जी ने भी यही अनुमान किया कि उन बानरों ने अवश्य सीता का दर्शन किया होगा। तदनंतर हनुमान आदि बानर मधुवन में विश्राम करने के पश्चात सुग्रीव से मिलने के लिए राम लक्ष्मण के निकट आए। उनमें से हनुमान की चाल ढाल और मुख की प्रसन्नता देखकर राम जी को विश्वास हो गया कि सीता का दर्शन तो शायद इसी ने ही किया है। हनुमान आदि ने वहां आकर श्री राम, सुग्रीव तथा लक्ष्मण को प्रणाम किया। फिर राम के पूछने पर हनुमान ने कहा, राम जी मैं आपको बहुत प्रिय समाचार सुनाता हूं, मैंने माता जानकी जी के दर्शन किए हैं, ये आपकी बड़ी कृपा हुई है। पहले हम सब लोग यहां से दक्षिण दिशा में जाकर पर्वत, वन और गुफाओं में ढूंढते ढूंढते थक गए थे। इतने में एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई पड़ी, वो बहुत योजन लंबी चौड़ी थी। भीतर कुछ दूर तक अंधेरा था, घने जंगल थे, उसमें बहुत सी जानवर रहते थे। बहुत दूर तक मार्ग तय करने के बाद गुफा के अंदर सूर्य का प्रकाश देखने में आया। वहां एक बहुत सुंदर दिव्य भवन बना हुआ था। मालूम चला कि वो मैदानों का निवास स्थान था। उसमें प्रभावती नाम की एक तपस्विनी तप कर रही थी। उसने हम लोगों को नाना प्रकार के भोजन दिए जिन्हें खाने से हमारी थकावट तत्काल दूर हो गई, शरीर में एक बहुत बड़ा बल आ गया। फिर प्रभावती के बताए हुए मार्ग से हम लोग जो ही गुफा से बाहर निकले त्यों ही देखते हैं कि वह खारा समुद्र हमारे पास ही है और सई, मलय और दुर्दर नाम के पर्वत भी हमारे सामने खड़े हैं। फिर हम सब लोग मलय पर्वत पर चढ़ गए। वहां जब समुद्र पर दृष्टि पड़ी तो हृदय विषाद से भर गया, हम जीवन से निराश हो गए। भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ ये सैकड़ों योजन विस्तृत महासागर, इसको कैसे पार किया जाएगा, ये सोचकर हमें बड़ा दुख हुआ। अंत में हम सब लोग अनशन करके प्राण त्यागने का निश्चय करने के लिए वहां बैठ गए। आपस में बातचीत होने लगी, बीच बीच में जटायु का प्रसंग भी छिड़ गया। उसे सुनकर एक पर्वत शिखर के समान विशाल काय घोर रूपधारी भयंकर पक्षी हमारे सामने आया। हम सब डर गए, हमने देखा ये कौन सी आफत है। उसने हम लोगों के पास आकर कहा, आप लोग डरना नहीं, तुम जटायु की बात कर रहे थे इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनने आया हूं। मैं जटायु का बड़ा भाई हूं, मेरा नाम संपाति है, मुझे अपने भाई को देखे बहुत दिन हो गए, अतः मैं उसके विषय में जानना चाहता हूं। तब हमने जटायु की मृत्यु और आपके संकट का समाचार संक्षेप में सुना दिया। ये अप्रिय समाचार सुनकर संपाति की आंखों से आंसू निकले और फिर उन्हें कहा, राम कौन है, सीता कैसे हरी गई और जटायु की मृत्यु किस प्रकार हुई। इस प्रकार हमने उन परिचय दिया, आपका परिचय दिया, सीता हरण जटायु मरण सब बात उनको सुनाई और अनशन का कारण भी बता दिया। उसने सुनकर कहा, सुनो मेरी बात सुनो, कभी कभी बुड्ढों की बात से बड़ा लाभ होता है। हम लोगों को उपवास से रोकते हुए उसने कहा, रावण को मैं जानता हूं, मैं तो कई बार लंका गया हुआ हूं, लंका मेरी देखी हुई है, वह समुद्र के उस पार त्रिकूट गिरी की कंदरा में बसी हुई है, विदेह कुमारी सीता वही होगी, तनिक भी संदेह नहीं है। तुम उपवास करके क्यों मरते हो, तुम प्रयत्न करके सीता के दर्शन करके आओ। उसकी बात सुनकर हम सब लोग तुरंत उठ खड़े हो गए और समुद्र पार करने के विषय में सलाह करने लगे। जब कोई भी उसे लांघने का साहस न कर सका, तब मैं अपने पिता वायु के स्वरूप में प्रवेश करके सोयोजन विस्तृत लांघ गया। समुद्र के जल में एक राक्षसी थी, जाते समय मैंने उसे भी मार डाला। लंका में पहुंचकर रावण के अंतःपुर में मैंने पतिव्रता सीता का दर्शन किया। वे आपके दर्शन की लालसा से बराबर तप और उपवास करती हैं। उनके पास एकांत में जाकर मैंने कहा, देवी मैं रामचंद्र जी का दूत एक बानर हूं, आपके दर्शन के लिए आकाश मार्ग से यहां आया हूं। दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण सकुशल हैं, बानर राज सुग्रीव इस समय उनके रक्षक हैं, उन सब ने आपका कुशल क्षेम पूछा है। अब थोड़े ही दिनों में बानरों की सेना साथ लेकर आपके स्वामी यहां पधारने वाले हैं, आप मेरी बात पर विश्वास करें, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं राम जी का दास हूं, मेरे पिता का नाम केसरी है, मैं वायुपुत्र हूं, मेरी मां का नाम अंजना है। थोड़ी देर तक तो सीता ने विचार किया, फिर कहा, अच्छी बात है, यहां एक अविंध्य नाम के राक्षस रहते हैं, उन्होंने मेरे पास एक समाचार भेजा है कि तुम्हारे पास एक बंदर आएगा, उस बंदर का नाम उन्होंने मुझे बताया है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। माताजी मेरा नाम हनुमान है। हाँ बस यही नाम बताया था। उसने तुम्हारे जैसे मंत्रियों से युक्त सुग्रीव का भी परिचय दिया था। महाबाहो अब भगवान राम के पास जाओ, ऐसा कहकर उसने अपनी पहचान के लिए एक मणि दी तथा विश्वास दिलाने के लिए एक कथा सुनाई और कहा, हे वानर तुम जाकर राम जी से कहना कि अपन चित्रकूट पर्वत पर रहते थे, उस समय एक कौवे ने आकर हमारे चोंच से शरीर में घाव किया था, फिर आपने उसके ऊपर एक सींक का बाण बनाकर शस्त्र बनाया, वो वही उस कथा का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद वे सब समझ जाएंगे, क्योंकि ये कथा केवल राम जानते हैं, या मैं जानता हूं, या वो कौवा जानता है, या अब तुम जानते हो। इस प्रकार सीता का संदेश अपने हृदय में धारण करके मैंने लंकापुरी जलाई और अब आपकी सेवा में आ गया हूं, ये प्रिय समाचार सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर वहां सुग्रीव की आज्ञा से बड़े बड़े बानर इकट्ठे होने लगे। सर्वप्रथम बाली का ससुर सुषेण श्री राम जी की सेवा में उपस्थित हुआ, उसके साथ वेगवान वानरों की 10 अरब सेना थी। महाबलवान गज और गवय एक एक अरब सेना लेकर आए। गवाक्ष के साथ 60 अरब बानर थे। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से ही प्रसिद्ध बानर अपने साथ 100 अरब बानर को बानरों की फौज लेकर आया। महाबली पनस के साथ 52 करोड़ सेना थी। अत्यंत पराक्रमी दधिमुख भी तेजस्वी बानरों की बहुत बड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ। जांबवान के साथ भयानक पौरुष दिखाने वाले काले रीछों की 100 अरब सेना थी। ये तथा और भी बहुत से बानर सेनाओं के सरदार श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए इकट्ठे हुए। इन बानरों में से कितनों का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा, कई भैंसों की तरह मोटे और काले थे, कितने ही शरद ऋतु के बादल जैसे सफेद होते हैं ऐसे थे, बहुतों के मुख सिंदूर के समान लाल था। बानरों की विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई पड़ती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस माल्यवान पर्वत के ही आसपास सबका पड़ाव पड़ा हुआ था। इस प्रकार जब सब ओर से बानरों की फौज इकट्ठी हो गई, तब सुग्रीव सहित भगवान श्री राम ने एक अच्छी तिथि उत्तम नक्षत्र शुभ मुहूर्त में वहां से कूच कर दिया। उस समय सेना व्यूह के आकार में खड़ी गई थी। उस व्यूह के अग्रभाग में पवन नंदन हनुमान थे और पिछले भाग की रक्षा लक्ष्मण जी कर रहे थे। इनके अतिरिक्त नल नील अंगद क्राथ मैंद और द्विविद भी सेना की रक्षा करते थे। इन सब के ऊपर सुरक्षित होकर वह फौज राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मार्ग में जंगल और पहाड़ों पर पड़ाव डालती हुई खारे समुद्र के पास वो सेना जा पहुंची और उसके तटवर्ती वन में उसने डेरा डाल दिया। तदनंतर भगवान राम ने प्रधान प्रधान बानरों के बीच सुग्रीव को समयोचित बात कही। सुग्रीव, हमारी ये सेना बहुत बड़ी है और इधर सामने अगाध महासागर भी है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। ऐसी दशा में आप लोग उस पार जाने के लिए क्या उपाय सोच रहे हैं? इतनी सेना उतारने के लिए जो हम लोगों के पास नावें भी तो नहीं हैं, व्यापारियों के व्यापारियों को जहाजों से पार किया जा सकता है, पर हमारे जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारी फौज कितनी दूर तक फैली हुई है? अभी तक किष्किंधा के अंदर भी हमारी सेना क्रम से आती हुई भी वहां इकट्ठी हो रही है। यदि इसकी रक्षा का उचित प्रबंध नहीं हुआ तो मौका पाकर शत्रु इसका नाश भी कर सकता है। हमारे विचार में यह आता है कि किसी उपाय से समुद्र की आराधना करें। समुद्र भी तो देवता है, यहां उपवास पूर्वक धरना दें, यही कोई मार्ग बता सकता है। उपासना करने पर भी इसने मार्ग नहीं बताया तो अपने अग्नि के समान तेजस्वी अमोघ बाणों से हमको सुखा देने की विद्या भी आती है। यूं कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित आचमन करके समुद्र के किनारे कुशासन बिछाकर लेट गए। तब नद और नदियों के स्वामी समुद्र ने जलचरों सहित प्रकट होकर स्वप्न में राम को दर्शन दिया और कहा, हे कौशल्यानंदन, मैं आपकी क्या सहायता करूं? रामचंद्र जी ने कहा, हे नदीश्वर, मैं अपनी सेना के लिए मार्ग चाहता हूं जिससे जाकर रावण का वध कर सकूं। यदि मेरे मांगने पर भी रास्ता नहीं दोगे तो मेरे अभिमंत्रित किए हुए दिव्य बाणों से तुम्हें सुखा डालूंगा। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर समुद्र को बड़ा कष्ट हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपका सामना थोड़े ही कर सकता हूं। आपके काम में विघ्न डालने की मेरी इच्छा नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए, फिर आपको जो करना है सो कीजिए। यदि आपकी आज्ञा मानकर राह दे दूंगा तो दूसरे लोग भी धनुष का बल दिखाकर मुझे ऐसी आज्ञा दिया करेंगे। तो फिर समुद्र का इतना विशाल होना और समुद्र का इतना गहन होना कोई अर्थ नहीं रखेगा। उसके पश्चात मैं आपका पूर्वज हूं, मैं आपके सामने तो रास्ता दिखाकर या धनुष बाण के सामने झुककर मैं कोई न कोई उपाय कर सकता हूं, पर सबके सामने ऐसा करने पर आपका भी पूर्वज होने के नाते आपका भी तो अपमान होगा। इसलिए आपकी सेना में नल नामक एक बानर है, विश्वकर्मा का पुत्र है, उसे शिल्प शास्त्र का ज्ञान है। वह अपने हाथ से जो भी तीर्ण काष्ठ पत्थर डालेगा उसे मैं ऊपर ही ऊपर रोके रखूंगा, मैं उसको अपनी ओर नीचे नहीं खींचूंगा। इतनी सहायता कर सकता हूं, इससे आपका पुल बन जाएगा। समुद्र इतना कहकर अंतरित हो गया। रामचंद्र जी ने धरना छोड़ दिया। नल को बुलाकर कहा, नल, तुम समुद्र पर पुल बनाओ, मुझे मालूम है कि तुम इस कार्य में कुशल हो। इस प्रकार नल को आज्ञा देकर भगवान राम ने पुल तैयार करवाया, जिसकी लंबाई 400 कोस की और चौड़ाई 40 कोस की। आज ही वह इस पृथ्वी पर नल सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर वहां श्री रामचंद्र जी के पास राक्षस राज रावण का भाई धर्मात्मा विभीषण आया। उसके साथ 4 मंत्री थे। भगवान राम बड़े उदार हृदय वाले थे। उन्होंने विभीषण को स्वागत पूर्वक अपना लिया। सुग्रीव के मन में शंका हुई कि ये शत्रु का कोई जासूस न हो, परंतु रामचंद्र जी ने उसकी चेष्टा, व्यवहार, मनोभाव की परीक्षा करके उसे सत्य और शुद्ध पाया, इसलिए उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया। इतना ही नहीं, उसी क्षण विभीषण को राक्षसों के राजपद पर अभिषिक्त भी कर दिया। लक्ष्मण के साथ उनकी मित्रता हो गई, स्वयं उसे अपना गुप्त सलाहकार भी बना लिया। फिर विभीषण की सम्मति लेकर सब लोग पुल की राह से चले और 1 महीने में समुद्र के पार पहुंच गए। 1 महीना लगे। वहां लंका की सीमा पर फौज की छावनी पड़ गई और वानर वीरों ने वहां कई कई सुंदर सुंदर बगीचों को तहस नहस कर दिया। रावण के 2 मंत्री थे, एक शुक और एक सारंग। वे दोनों भेद लेने के लिए आए, बंदरों का वेश बनाया, राम जी की सेना में मिल गए। पर विभीषण ने उन दोनों को पहचान लिया, पकड़ लिया। फिर जब वे अपने असली रूप में प्रकट हुए तो राम की सेना दिखाकर छोड़ दिया। जाओ रावण से कह देना ये हमारी सेना है। लंका के उपवन में सेना ठहराई गई और राम ने अत्यंत बुद्धिमान अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। लंका के उस वन में अन्न और पानी का अधिक सुविधा थी, फल और मूल प्रचुर मात्रा में प्राप्य थे, इसलिए सेना का पड़ाव पड़ा कोई कठिनाई नहीं हुई और भगवान राम सब ओर से उसकी रक्षा करते थे। इधर रावण भी लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से युद्ध सामग्री का संग्रह करने लगा। लंका की चार दीवारी और नगर द्वार बहुत मजबूत थे, स्वभाव से ही किसी आक्रमणकारी का वहां पर पहुंचना बड़ा कठिन था। नगर के चारों ओर सात गहरी खाइयां थी जिसमें अगाध जल था और उसमें बहुत से मगरमच्छ आदि जल जंतु रहते थे। इन खाइयों में खैर की कीलें गाड़ी हुई थी, इधर मजबूत किवाड़ थे, गोला बाली करने वाली मशीनें फिट की हुई थी। इन सब कारणों से उनमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था। मूसल, बनेठी, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोम के मुदगर और तोप आदि शस्त्र अस्त्र सभी प्रकार का संग्रह था। नगर के सभी दरवाजों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे और घूम फिरकर रक्षा करने वाले रिसाले भी तैनात किए गए थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार तथा घुड़सवार भी थे। इधर अंगद जी दूत बनकर लंका में गए। नगर द्वार पर पहुंचकर उन्होंने रावण के पास खबर भेजी, निडर होकर पुरी में प्रवेश किया। उस समय करोड़ों राक्षसों के बीच महाबली अंगद मेघमाला से घिरे हुए सूर्य के भांति शोभा पा रहे थे। रावण के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, राक्षसराज, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कौशल देश के राजा श्री राम जी ने तुमसे कहने के लिए मुझे आज्ञा दी है और उनका ये संदेश है, उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। जो अपने मन पर काबू न रखकर अन्याय में लगा रहता है, ऐसे राजा को पाकर उसके अधीन रहने वाले देश और नगर भी नष्ट हो जाया करते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके अपराध तो केवल तुमने किया है, परंतु उसका दंड बेचारे निरपराध लोगों को भी भोगना पड़ेगा, तुम्हारे साथ वे भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया तथा राजर्षियों तथा रोती बिलखती अबलाओं के भी प्राण लिए। इन सब अत्याचारों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें मंत्रियों सहित मार डालूंगा, साहस हो तो युद्ध करके पौरुष दिखाओ। निशाचार, यद्यपि मैं मनुष्य हूं तो भी मेरे धनुष की शक्ति को तुम्हें देखना होगा, समझना होगा। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा मेरे हाथ से कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना संभव नहीं है। मैं अपने तीखे बाणों से इस भूमंडल को राक्षसों से शून्य कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बात सुनकर रावण सहन नहीं कर सका, क्रोध से अचेत हो गया। उसका इशारा पाकर चार राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े, उसी तरह उन्होंने अंगद के चार अंगों को पकड़ लिया। अंगद उन चारों को लिए दिली उछाल कर महल की छत पर फेंक दिया। उछलते समय उनके शरीर से छूटकर वे चारों राक्षस ऊपर जाकर नीचे गिरे, उनकी छाती फट गई और बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण से वे जोर जोर से कराहने लगे। अंगद महल के कंगुरे पर चढ़ गए और वहां से कूदकर लंकापुरी को लांघते हुए अपनी सेना के समीप आ पहुंचे। वहां राम जी से मिलकर उन्होंने सारी बात बताई। राम जी ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की और वे विश्राम करने चले गए। तदनंतर भगवान राम ने वायु के समान वेग वाले वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा लंका पर एक साथ धावा बोल दिया और चार दीवारी वहीं तुड़वा डाली। नगर के दक्षिण दरवाजे में प्रवेश करना बड़ा कठिन था, किंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जांबवान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। फिर युद्ध करने में कुशल वानर वीरों की 100 अरब सेना लंका के भीतर घुस गई। उस समय उनके साथ 3 करोड़ भालुओं की सेना भी थी। इधर रावण ने भी राक्षस वीरों को युद्ध का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर आ पहुंचे और किले बंदी करके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा बानरों को भगाने और अपना पराक्रम बताने लगे। इधर बानर भी खंभों से मार मार कर निशाचरों को गिराने लगे। दूसरी ओर भगवान ने बाणों की वर्षा करके उनका संहार प्रारंभ किया। एक ओर लक्ष्मण भी अपने सुदृढ़ बाणों से किले के भीतर रहने वाले राक्षसों के प्राण लेने लगे। रावण को जब ही पता चला कि ये सब राक्षस मरते जा रहे हैं, तो वह क्रोध में भरकर पिशाचों और राक्षसों की भयावनी सेना को स्वयं लेकर युद्ध में आ पहुंचा। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र की कला में बड़ा प्रवीण था। शुक्र की बताई हुई रीति से उसने अपनी सेना का व्यूह रचा और बानरों का संहार करने लगा। रामचंद्र जी ने जब रावण को व्यूहाकार सेना के साथ लड़ने को उपस्थित देखा, तो उन्होंने उसके मुकाबले बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना बनाई। फिर रावण के साथ भगवान राम, इंद्रजीत के साथ लक्ष्मण, विरूपाक्ष के साथ सुग्रीव, निखरवट के साथ तार, तुंड के साथ नल और पटुष के साथ पनस का युद्ध होने लगा। जिसने जिसको अपने जोड़े का समझा, वह उसके साथ स्वतः ही भिड़ गया। यह युद्ध यहां तक बढ़ा कि प्राचीन काल का देवासुर संग्राम आज स्पष्ट दिखाई दे रहा था और वो भी फीका पड़ गया। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर युद्ध में भयानक पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास आकर गर्जना करते हुए उसे गदा से मारा। विभीषण ने भी एक महाशक्ति हाथ में ली और प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा। उस शक्ति का वेग वज्र के समान था। प्रहस्त का मस्तक कट करके गिर गया। आंधी से उखाड़े हुए वृक्ष के समान धाराशायी हो गया। उसके मरने के बाद धूम्राक्ष आया और बांदरों की ओर दौड़ा। अपने बाणों के प्रहार से बंदरों के अंदर हाय त्राही मचा दी। हनुमान जी ने धूम्राक्ष को उसके घोड़े रथ सहित मार डाला। धूम्राक्ष भी गया। उसके मरने से बांदरों को कुछ तसल्ली हुई और भयंकर राक्षस मरने लगे। धूम्राक्ष और प्रहस्त के वध की बात सुनकर रावण को बड़ा शोक हुआ। फिर वह उठकर कहने लगा, अब कुंभकर्ण के पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उसने ऊंची आवाज वाले नाना प्रकार के बाजे बजवाए, बड़ा बड़ा प्रयत्न करवाया, घोर निद्रा में पड़े हुए कुंभकर्ण को जगाया। उसके खर्राटे से बड़े बड़े योद्धा उसके नाक की हवा से और मुख की हवा से दूर गिर जाया करते थे। खर्राटा हाथी के हाथी गुड़क जाते थे। बहुत प्रयत्न किया तब कुंभकर्ण जगा। रावण ने कहा, कुंभकर्ण तुम्हें पता नहीं, हम लोगों पर बड़ी भारी आपत्ति आ गई। मैं राम की स्त्री सीता को हर लाया, उसी को वापस लेने के लिए समुद्र पर पुल बांधकर वो राम यहां सेना सहित आ गया। उसने प्रहस्त आदि आत्मीय व्यक्तियों को मार डाला, राक्षसों का संहार कर दिया। अब तुम्हारे सिवाय कोई ऐसा वीर नहीं है जो राम को मार सके। भाई, तुम बलवानों में बड़े श्रेष्ठ हो, तुम्हारे ही बल पर मैंने युद्ध किया था। जाओ, कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और राम आदि संपूर्ण शत्रुओं का नाश करो। कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को बहुत उलाहना दिया और फिर वह अनुचरों सहित नगर से बाहर निकला। बानरी सेना पर दृष्टि पड़ी। फिर जब उसने भगवान राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर उधर दृष्टि डाली, तो उसे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण दिखाई दिया। इतने में ही बानरों ने आकर कुंभकर्ण को सब ओर से घेर लिया। बड़े बड़े पेड़ उखाड़ उखाड़ कर उसके ऊपर डाले जाने लगे। कुछ बानर नाना प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। कुंभकर्ण इन सब को एक तमाशा ही समझ रहा था। जैसे हाथी पर फूल फेंकने से क्या होता है, ऐसे ही कुंभकर्ण ने इनके प्रहारों को कुछ नहीं समझा और वह हंसते हंसते बांदरों को खाने लगा। देखते देखते बल चंडबल वज्रबाहु नामक बानर उसके मुख के अंदर जाने लगे। कुंभकर्ण का ये कर्म देखकर तार आदि बानर थर्रा उठे, जोर जोर से चीत्कार करने लगे। सुग्रीव वहां दौड़ा आया और एक साल वृक्ष उखाड़कर कुंभकर्ण के सिर पर दे मारा। वह साल टूट गया परंतु कुंभकर्ण को कोई पीड़ा नहीं पहुंची। हां, उसके स्पर्श से वो कुछ सावधान जरूर हो गया कि ऐसा भी कोई मेरे पर पीछे से प्रहार कर सकता है। फिर तो उसने विकट गर्जना की और अपने बाहुबल से सुग्रीव को पकड़ लिया, दबा लिया। लक्ष्मण जी सब देख रहे थे। जब वह राक्षस सुग्रीव को लेकर जाने लगा तो और बानर वगैरह सब दौड़कर उसके सामने आए। कुंभकर्ण को लक्ष्य बनाकर बड़े वेगशाली बाण मारने लगे, उसके कवच को काट दिया और एक बाण उनके और वो रक्त रंजित हो जमीन में समा गया। कवच छाती छिद्र हो जाने के कारण सुग्रीव को तो उसने छोड़ दिया और अपने दो हाथों में बहुत बड़ी चट्टान लिए लक्ष्मण पर धावा कर दिया। लक्ष्मण के तीखे बाण मारकर ऊपर से उठी उसकी दोनों भुजाओं को लक्ष्मण ने काट दिया। अब उसके चार बाहें हो गईं, दो काटी तो चार आ गई। कुंभकर्ण ने पुनः चार हाथों में शिलाएं लेकर आक्रमण किया। सुमित्रा नंदन ने अपने हस्त लाघव दिखाते हुए फिर से बाण मारकर चारों भुजाओं को काट दिया। तब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया, अनेकों पैर, अनेकों सिर, अनेकों भुजाएं हो गईं। अब लक्ष्मण देख के घबरा गए कि जो मारते हैं त्यों इसके दुगने चौगने रूप बनते हैं। तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करके उस पर्वताकार राक्षस को चीर डाला। जैसे बिजली वृक्ष से धराशायी होती है, उसी प्रकार उस दिव्य अस्त्र से आहत होकर महाबली राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुंभकर्ण को प्राणहीन होकर गिरते देख राक्षस लोग भय के मारे भाग गए। इस युद्ध में राक्षसों का बहुत अधिक संहार हुआ, बानर बहुत कम मारे गए। पहली बार सुना होगा आपने कि लक्ष्मण जी ने कुंभकर्ण को मारा। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजीत से कहा, बेटा अब तो हमारा आधार तू ही है, तू शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है। युद्ध में इंद्र को जीतकर तूने अपने उज्ज्वल सुयश का विस्तार किया है, अतः युद्ध भूमि में जाकर राम लक्ष्मण और सुग्रीव का नाश करो। इंद्रजीत ने कहा, बहुत अच्छा, पिता की आज्ञा स्वीकार की और कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत संग्राम भूमि की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने स्पष्ट रूप से अपना नाम बताकर परिचय दिया, मैं रावण पुत्र मेघनाद, इंद्र को युद्ध में पराजित करने वाला, राम लक्ष्मण की सेना के साथ युद्ध करने के लिए आया हूं। मैं अपना परिचय स्वयं इसलिए देना चाहता हूं कि मैं युद्ध को छिपकर नहीं करता, प्रकट होकर युद्ध करता हूं, और मैं इस युद्ध के अंदर सबसे पहले लक्ष्मण को ललकारता हूं। लक्ष्मण भी धनुष पर बाण संधान किए बड़े वेग से उसके सामने आए और सिंह जैसे छोटे मृग को भयभीत करता है उस प्रकार अपने धनुष के टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। मेघनाद और लक्ष्मण दोनों ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग जानते थे। दोनों की आपस में बड़ी लागडांट थी, दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे और उन दोनों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच में बाली कुमार अंगद ने एक पेड़ उखाड़कर उस इंद्रजीत के सिर पर मारा, परंतु चोट खाकर भी विचलित नहीं हुआ। इतने में अंगद उसके निकट चले गए, फिर तो उसने उसके बाईं पसली में बड़े जोर से गदा मारी। अंगद बड़े बलवान थे, अतः उनके इस प्रहार को कुछ भी नहीं गिना, क्रोध में भरकर पुनः एक साल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे इंद्रजीत के ऊपर फेंका। उसकी चोट से उसका रथ चकनाचूर हो गया, घोड़े तथा सारथी मर गए। तब इंद्रजीत उस रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वही अंतर्धित हो गया। उसे अंतरित हुए देख भगवान राम भी वहां आ गए और अपनी सेना की सब ओर से रक्षा करने लगे। इंद्रजीत भी क्रोध में भरकर राम और लक्ष्मण के सारे शरीर पर सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करने लगा। बानरों ने देखा कि छिपकर बाणों की झड़ी लगा रहा है, कैसे इसको मारा जाए, किधर शिलाएं फेंकें, किधर हम वृक्षों को फेंकें। तब ये लोग आकाश में उड़ गए बंदर लोग, और इंद्रजीत छिपे ही छिपे बानरों तथा राम के ऊपर प्रहार करने लगा। दोनों भाइयों के शरीर बाणों से भर गए और आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा के भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में विभीषण आए, उन्होंने प्रज्ञास्त्र से उनकी मूर्छा दूर की और सुग्रीव ने विशल्या नाम की औषधि को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे दोनों भाइयों के देह में लगाया। इसके प्रभाव से सरलतापूर्वक इनके शरीर का बाण निकलकर क्षण भर में ही घाव अच्छा हो गया। इस उपचार से वे दोनों महापुरुष शीघ्र होश में आए, आलस्य और थकावट भी दूर हो गई। भगवान राम को पीड़ा से रहित देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज श्वेतगिरी से यहां आपकी सेवा में एक गुह्यक आया है जो कुबेर की आज्ञा से यह दिव्य जल लेकर आया है। इससे आंख धो लेने पर आप माया से छिपे हुए प्राणियों को देख भी सकते हैं और जिसे जिसे यह जल देंगे वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है। कितनी नई बात है, देखो कुबेर ने एक गुह्यक को भेजा है, महाराज जल ले, ये लगाओ आग पर। राम जी ने जल स्वीकार किया, दोनों नेत्र धोए। उसके बाद लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवान, हनुमान, अंगद, महेंद्र, द्विविध और नील ने भी उसका उपयोग किया। सभी बांदरों ने उससे अपने अपने नेत्रों से नेत्र धोए जल से, और विभीषण के बताए अनुसार उस जल का प्रभाव दिखाई दिया। एक ही क्षण में उन सबकी आंखों से अतीन्द्रिय वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण होने लगा। इंद्रजीत ने उस दिन जो बहादुरी दिखाई थी उसका बखान करने के लिए वह अपने पास पिता के पास चला गया और फिर वह युद्ध की इच्छा से दोबारा क्रोध से भरकर वहां पहुंचा। इतने में ही विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण उसके ऊपर धावा बोल दिया। इंद्रजीत ने अनेक मर्म भेदी बाण मारकर लक्ष्मण को बींद डाला। तब लक्ष्मण ने दाहक नाम के बाणों से मेघनाद पर प्रहार किया। लक्ष्मण की चोट से आहत होकर इंद्रजीत क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने अपने शत्रु के ऊपर विषधर सर्प के समान 8 बाण माने। फिर लक्ष्मण जी ने अग्नि के समान तीखे स्पर्श वाले 3 बाण मारे। उन बाणों के स्पर्श से इंद्रजीत के प्राण पंखेरु उड़ गए। प्रिय पुत्र मेघनाद को देखो भाई, कहीं को बोले थे चाहे थारा 5 बजो। प्रिय पुत्र मेघनाद के मारे जाने पर रावण रत्न जटित सुवर्ण के रथ पर बैठकर लंका से चला। मन में उसके यही भाव था कि अब हमको या तो मरना है और या मारना है। अनेकों राक्षस उसके साथ थे, वानर युद्धपतियों के साथ मुठभेड़ हो गई। राम जी की ओर चला। राम जी ने अपनी ओर आते देख महेंद्र, द्विविध, अंगद, हनुमान, जामवन चारों ओर से राम जी को घेर लिया। उन रीछ और बांदरों ने पृथ्वी से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर रावण को देखते देखते उसकी सेना का नाश कर डाला। मायावी राक्षस ने जब देखा कि शत्रु मेरी सेना को नष्ट किए डालते हैं तो उसने माया फैलाई। थोड़ी देर में उसके शरीर से निकले हुए बाण, शक्ति और रिष्टि आदि आयुधों से सुसज्जित सैकड़ों हजारों राक्षस दिखाई देने लगे, किंतु भगवान राम ने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन सभी को मार डाला। इसके बाद रावण ने दूसरी माया फैलाई। वह राम और लक्ष्मण के रूप धारण करके राम लक्ष्मण की ओर दौड़ने लगी। राक्षस राज की इस माया को देखकर लक्ष्मण जी को किसी प्रकार की घबराहट नहीं हुई। राम जी से कहा, भगवान अपने ही समान आकार वाले इन सभी पापी राक्षसों को मार डालिए। तब राम ने उन्हें तथा और भी अनेकों राक्षसों को धराशायी कर दिया। इसी समय इंद्र का सारथी मातली नीलवर्ण के घोड़ों से जुता हुआ सूर्य के समान तेजस्वी रथ लेकर राम जी के सामने उपस्थित हुआ और कहा कि महाराज, जैत्र नाम का श्रेष्ठ रथ है, सब प्रकार के इसमें शस्त्र अस्त्र है, इंद्र ने भेजा है और इसी रथ पर बैठकर इंद्र विजय को प्राप्त होते हैं। आप भी मेरे सारथ्य में इसी प्रकार युद्ध करके रावण को मार डालिए, देरी मत कीजिए, अब रावण के मृत्यु का समय आ गया है। राम जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहकर रथ पर चढ़ गए। रावण पर चढ़ाई करते ही सब राक्षस हाहाकार करने लगे। आकाश में देवता लोग दुंदुभियां बजाते हैं, सिंहनाद करते हैं। राम और रावण का बड़ा घमासान युद्ध छिड़ता है। उस युद्ध की कोई उपमा मिलनी संभव नहीं है। राक्षस राज रावण ने राम के ऊपर इंद्र के वज्र के समान एक अत्यंत कठोर त्रिशूल छोड़ा। उस त्रिशूल को राम जी ने तत्काल अपने बाणों से काट डाला। उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावण पर भय सवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों लाखों तीखे तीखे बाण बरसाने लगा। इसके सिवा उसने भुसुंडी, शूल, मूसल, फारसा, शक्ति और तरह तरह के आकार की शतघ्नियों और पेने पेने छुरों की भी वर्षा प्रारंभ कर दी। रावण की इस विकट माया को देखकर समस्त बानर इधर उधर भागने लगे। तब राम जी ने अपने तर्कसों से एक बाण खींचकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिनंदित किया और फिर उस अभिमंत्रित किया और फिर उस अतुलित प्रभावपूर्ण बाण को रावण पर छोड़ दिया। राम जी ने ज्यों ही धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा, वह राक्षस अपने रथ, घोड़े, सारथी सहित भीषण अग्नि से व्याप्त होकर जलने लगा। इस प्रकार पुण्यकर्मा भगवान राम के हाथ से रावण का वध होता देखकर आकाश में देवता, गंधर्व, चारण, सिद्ध सब बड़े प्रसन्न हुए और सब वहां दुंदुभियां बजाने लगे। रावण को मारकर राम, लक्ष्मण और उनके सुहृदों को बड़ा आनंद मिला। देवता और ऋषियों ने बड़ी जय जयकार की, आशीर्वाद दिया, राम का अभिनंदन किया, राम जी की स्तुति की, फूलों की वर्षा की, खूब स्तुति गान किया, पूजन किया। और इधर राम ने लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया। उसके पश्चात वो जो अविंध्य नाम का बुद्धिमान और वयोवृद्ध मंत्री सीता जी को लेकर विभीषण के साथ राम के पास आया और बड़ी दीनता पूर्वक कहने लगा, महात्मन, हम वृद्ध हो गए, हमने लंका की बहुत पवित्र सेवा की थी, रावण को हमने समझाया, रावण समझ से काम नहीं ले रहा था, मैंने भी सोचा आपके दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, आज आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया, सदाचार परायणा देवी जानकी को आप स्वीकार कीजिए। उस समय सुंदरी सीता जी एक पालकी में बैठी थी, शोक से अत्यंत क्रिश हो गई थी, उनके शरीर में मैल चढ़ा हुआ था, जटाएं बहुत बढ़ी हुई थी। उन्हें देखकर राम जी ने कहा, जनक निंदिनी, मुझे जो काम करना था वे कर चुका हूं, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ, मेरे समान जो पुरुष धर्म विधि को जानने वाला है वह दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्री को एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है। राम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीता जी व्याकुल होकर कटे हुए केले के भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और समस्त बानर और लक्ष्मण जी भी ये बात सुनकर प्राणहीन से होकर निश्चेष्ट हो गए। उसी समय संसार की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी विमान पर बैठकर वहां पधारे। उनके साथ इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर, सप्तर्षियों ने भी दर्शन दिया और दिव्य तेजोमयी मूर्ति धारण किए हुए राजा दशरथ भी एक हंसों वाले प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमान पर बैठकर आए। उस समय देवता और गंधर्वों से व्याप्त सारा आकाश तारों से भरे हुए शरतकालीन आकाश के समान शोभा पाने लगा। तब यशस्विनी जानकी जी ने उन सब के बीच में खड़े होकर विशाल वक्षस्थल वाले श्री रामचंद्र जी से कहा, हे आर्य पुत्र, आप स्त्री और पुरुष की स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं देती, किंतु आप मेरी बात सुनिए। यह निरंतर गतिशील वायु सभी प्राणियों के भीतर चल रहा है। यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो ये वायु मेरे प्राण का हरण कर ले। हे वीरवर, यदि मैंने स्वप्न में भी आपके सिवा किसी और पुरुष का चिंतन न किया हो तो इन देवताओं के साक्षी देने पर आप मुझे स्वीकार कीजिए। तब वायु ने कहा, हे राम, मैं निरंतर गतिशील वायु हूं, सबके हृदय में रहता हूं, सबकी बात जानता हूं। सीता सचमुच निष्कलंक है, इसे तुम अपनी भार्या स्वीकार करो। अग्नि ने कहा, हे रघुनंदन, मैं सब प्राणियों के शरीर के भीतर रहता हूं और प्राणियों की गुप्त से गुप्त बातों को जानता हूं। मैं सत्य कहता हूं कि मैथिली का जरा भी अपराध नहीं है। वरुण बोले, राघव, समस्त भूतों में रस मुझसे उत्पन्न होते हैं। मैं निश्चय पूर्वक तुमसे कहता हूं, तुम मिथिलेश कुमारी को ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, रघुवीर, तुमने देवता गंधर्व सर्प यक्ष दानव और महर्षियों के शत्रु रावण का वध किया है। मेरे वर के प्रभाव से ये अब तक सभी जीवों के लिए अवध्य था। किसी कारणवश मैंने कुछ समय के लिए इस पापी की उपेक्षा कर दी थी। इस दुष्ट ने अपने वध के लिए सीता को हरा था। नलकुबर के शाप द्वारा मैंने ही जानकी की रक्षा की थी। रावण को पहले ही ये शाप दे चुका था कि यदि तू किसी पर स्त्री का शील उसकी इच्छा के बिना भंग करेगा तो तेरे सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए हे राम, तुम किसी प्रकार की शंका मत करो, सीता को स्वीकार करो। तुमने देवताओं का बड़ा भारी काम किया है। दशरथ जी कहने लगे, बेटा, तुम मेरी सब आज्ञा मानते हो, तो मेरी ये आज्ञा है, तुम सीता को स्वीकार करो और अब अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। राम जी बोले, महाराज, यदि आप मेरे पिता हैं, मैं आपको अनेकों बार प्रणाम करता हूं और अब मैं आपकी आज्ञा से सुरम्य पूरी अयोध्या की ओर प्रस्थान करता हूं। फिर राम जी ने देवताओं को प्रणाम किया, भाई बंधुओं से अभिनंदित हो बड़े प्रेम से सीता को अपने वक्षस्थल पर लगाया। सीता के नेत्रों से प्रेम से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, सीते, मैं सीधा स्वीकार करता तो इन देवताओं का प्रमाण आज कैसे मिलता? इन सब देवताओं ने तुम्हें प्रमाणित किया है। इनसे प्रमाणित कराने पर मैंने एक बहुत बड़ा आदर्श यहां उपस्थित किया है, इसलिए तुम इस प्रकार का कोई विचार न करना। सीता जी प्रेम से गदगद हो गई। इसके पश्चात शत्रुसूदन राम जी ने अविंध्य को अभीष्ट वर दिया और तिजटा राक्षसी को खूब धन और मान द्वारा संतुष्ट किया। इन सब के संतुष्ट हो जाने पर ब्रह्मा ने कहा, कौशल्य नंदन, कहो आज तुम्हें अब हम क्या क्या अभीष्ट वरदान दें? तब राम जी ने उनसे ये वर मांगे, देखो, मेरी धर्म में स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो, राक्षसों के द्वारा जो बानर मारे जा चुके हैं वे फिर जी उठे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। सब बानर जीवित हो गए। सौभाग्यवती सीता ने हनुमान जी को ये वर दिया, पुत्र, भगवान राम की कीर्ति रहने तक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। फिर वहां सबके सामने ही इंद्रादि देवता अंतरित हो गए। इसके पश्चात विभीषण से सम्मानित हो रामचंद्र जी ने लंका की रक्षा का प्रबंध किया और फिर सुग्रीवादी सभी प्रमुख बानरों सहित आकाशचारी पुष्पक विमान पर बैठकर सेतु के ऊपर होकर समुद्र को पार किया। समुद्र के इस ओर आकर उन्होंने पहले अपने मुख्य मुख्य मंत्रियों के सहित शयन किया था, वहां वहीं पर विश्राम किया। फिर धार्मिक भगवान राम ने रत्नों की भेंट देकर समस्त रीच और बानर सेना को संतुष्ट करके विदा किया। जब सब रीच बानर चले गए तो आप विभीषण और सुग्रीव सहित पुष्पक विमान द्वारा किष्कंधापुरी को चले। मार्ग में जानकी जी को वन की रमणीयता का दर्शन कराते रहे। किष्कंधा में पहुंचकर उन्होंने महान पराक्रमी अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। फिर वे सबको साथ ले लक्ष्मण जी के सहित जिस रास्ते से आए थे उसी से अपनी राजधानी को चले। अयोध्या के समीप पहुंचकर उन्होंने हनुमान को अपना दूत बनाकर भरत के पास भेजा। जब हनुमान जी लक्षणों के द्वारा उनका मनोभाव समझकर और उन्हें राम जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौटे, तब सब लोग नंदीग्राम में पहुंच गए। राम जी ने देखा कि भरत जी चीर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है, वे पादुका सामने रखकर आसन लगाए हुए हैं। भरत और शत्रुघ्न से मिलकर परम पराक्रमी रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी आत्म विभोर हो गए। फिर भरत और लक्ष्मण जी भी सबसे मिले। जानकी के दर्शन करके भरत शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर भरत जी ने आनंद से राम को अपने पास धरोहर रूप से रखा हुआ राज्य सौंप दिया। फिर विष्णु देवता वाले श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ने मिलकर शूर शिरोमणि भगवान राम का अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर श्री राम जी ने कपिराज सुग्रीव और पुलस्त्य नंदन विभीषण को घर जाने की आज्ञा दी। भगवान ने तरह तरह भोगों से उनका सत्कार किया। इससे जब उन्हें प्रसन्न और आनंद युक्त देखा तो उनका कर्तव्य समझकर उन्हें विदा किया, उनको कर्तव्य समझाया और विदा किया। इस समय राम से बिछुड़ने में बड़ा दुख हो रहा था। फिर पुष्पक विमान की पूजा की, उसे कुबेर जी को दे दिया तथा देवर्षियों की सहायता से गोमती नदी के तीर पर 10 अश्वमेध किए, जिनमें अन्नार्थियों के लिए हर समय भंडार खुला रहता था। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अतुल पराक्रमी श्री राम जी के वनवास के कारण बड़ा कष्ट भोगा गया। पुरु सिंह, तुम चिंता मत करो, तुम क्षत्रिय हो, अपने भुजबल के भरोसे प्रत्यक्ष फल देने वाले मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारा इसमें अणुमात्र भी अपराध नहीं है। इस संकटपूर्ण मार्ग में तो इंद्र के सहित सभी देवता और असुरों को आना ही पड़ता है, किंतु जिस प्रकार इंद्र ने मरुतों की सहायता से वृत्रासुर का नाश किया था, उसी प्रकार तुम अपने देवतुल्य धनुर्धर भाइयों की सहायता से तुम अपने सभी शत्रुओं को संग्राम में परास्त करोगे। राम तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावण को युद्ध में मारकर जानकी जी को ले आए थे, उनके सहायक तो केवल बानर और रीच ही थे। इन सब बातों पर तुम विचार करो। ऐसी ऐसी बातें कहकर मार्कंडेय जी ने राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिए होता है, न भाइयों के लिए होता है, न राज्य छिन जाने का होता है। ये जैसी पतिव्रता है, ऐसी क्या कोई दूसरी भी भाग्यवती नारी इस संसार में पहले कभी देखी या सुनी गई है क्या? उसका चरित्र सुनाइए। अब ये चरित्र कल प्रारंभ होगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।